स्वार्थमयी जग जान के सुमेरा सदगुरु दे तथा हमारे भारत देश को महान बनाने वाली मातृशक्ति वसुंधरा की गोद में खिले हुए त्रिवर्ती राजपूत कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सती सुलोचना का पावन प्रसंग रखने जा रही हूं, जिसमें आप सुनेंगे कि लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध हो जाने पर सुलोचना किस प्रकार सती होती है। तो आइए श्रवण करें राजपूत कैसेट की ही प्रस्तुति में। कुंभकरण का जब हुआ रण में काम तमाम, राक्षस कुल को फिर कहा पल भर भी बेसाम। रण क्षेत्र में जब कुंभकर्ण का वध हो जाता है तो पूरे राक्षस कुल में कुंभकर्ण का वध चिंता का विषय बन गया। तब मेघनाद अपने पिताजी से बोला।
मेघनाद बोला तभी धरे पिताजी धीर, चाचा का बदला लेने की सोच मैं तदबीर।
मेघनाद कहता है, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं अपने चाचा कुंभकर्ण के वध का बदला लेने का उपाय सोचता हूँ। ये सुनकर रावण ने अपने बेटे से कहा।
रावण कहे सुनो बचन हमार, जल्दी जाओ पुत्र संभार, यज्ञ रचाओ तुम देवी मंदिर।
रावण अपने पुत्र मेघनाद से मंदिर में जाकर देवी माँ से यज्ञ द्वारा शक्ति पाने की विनती करता है। यज्ञ का धुआं जब रामादल में देखा गया तो वह चिंता का विषय बन गया। तब विभीषण इस प्रकार बोले।
मेघनाद का यज्ञ है अगर पूर्ण हो जाए
मेघनाथ द्वारा इस यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाती है तो उसके उपरांत रामादल में उसे कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ही हनुमत बोले,
यह सुनकर के हंसे तो रत ही बजरंगी, हारे दिल की हार न कोई है संगी। यह सुनकर के हंसे तो रत ही बजरंगी, हारे दिल की हार न कोई है संगी। आत्मविश्वास खो जाता फिर अंधविश्वास जगाता, देव मनाता बात है सत्संगी, हारे दिल की हार न कोई है संगी। यह सुन करके हंसे तो रत ही बजरंगी, हारे दिल की हार न कोई है संगी।
विभीषण की बात को सुनकर हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं कि भाई, जब किसी भी व्यक्ति का बुरा समय आ जाता है तो वह आत्मविश्वास को खो देता है और आत्मविश्वास छोड़कर देवी देवता के पीछे अर्थात अंधविश्वास को मानता है। हुआ क्या,
वानर सेना जब भिड़ी भीषण युद्ध कराल, मेघनाद भी फिर लड़ा लगा नहीं कुछ का,
सेना ने भयंकर युद्ध किया। ये देखकर मेघनाथ भी युद्ध लड़ने को तैयार हो गया। आगे होता क्या है,
तभी लखड़ जी का तुरत गया धनुष पर हाथ, आज्ञा दो रघुनाथ अब झुका रहा हूँ माथ।
मेघनाथ को युद्ध में देखकर लक्ष्मण युद्ध में जाने के लिए अपने भ्राता श्री राम से आज्ञा लेते हैं। रामचंद्र जी इस प्रकार बोले,
घननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है, बाला है एक ही प्रमीला नारी है, वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, तीनों लोकों में है प्रसिद्ध वासुक राजकुमारी है। इस जग में सुलोचना नारी उत्तम पतिव्रता कहाती है, उसके व्रत की ही शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है।
रामचंद्र जी इस प्रकार समझाते हुए बोले कि लक्ष्मण, मेघनाद एक पतिव्रता स्त्री का पति है जिसकी पतिव्रत भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, सुलोचना की पतभक्ति ही मेघनाथ का विजय का कारण बनती है। अतएव तुम्हें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है।
समर क्षेत्र में लखनऊ ने किया तभी प्रस्थान, युद्ध हुआ घननाद से जो है अति बलवान, युद्ध हुआ घननाद से जो है अति बलवान।
रण क्षेत्र में पहुंचने पर लक्ष्मण व मेघनाद में घमासान युद्ध हुआ, तो मेघनाद बोला,
उस बार भागने बचा लिया, उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाओगे, इस बार न बचने पाओगे। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब
लक्ष्मण से कहता है कि पिछली बार तुम अपने भाग की वजह से जीवित बच गए, परंतु इस बार किसी भी तरीके से बच नहीं पाओगे। तब लक्ष्मण ने कहा, मेघनाद को समझाते हुए कहता है, अहंकार मनुष्य का नाश कर देता है, अहंकार के कारण ही खरदूषण जैसे लोगों का द कुंभकर्ण का वध हुआ, अतएव तुम अहंकार को छोड़ दो। हुआ क्या,
लक्ष्मण का उपदेश सुनकर जा फिर भगवान बोले, बच सकते नहीं
वचन सुनकर मेघनाद ने सोचा,
ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा तभी लक्ष्मण ने निज बाण,
सुनकर मेघनाथ क्रोधित होकर फिर बोला कि आज तुम युद्ध क्षेत्र से जीवित नहीं बचोगे। ब्रह्म शक्ति की याद करते हुए अतिशीघ्र लक्ष्मण ने मेघनाथ पर बाण से प्रहार किया, जो मेघनाथ की मौत की निशानी थी।
घबराया घननाद मारो है लक्ष्मण का,
मेघनाद के जा लगा जिससे मेघनाद का रण क्षेत्र में प्राणांत हो गया। आगे हुआ क्या?
लकड़ लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ सीता उधर सुनिए वही प्रसंग।
मेघनाद का वध करके रामादल में पहुंचते हैं। उधर सुलोचना एक सखी के साथ उद्यान विहार कर रही है और उसके दिल में मन मस्तिष्क में अपने पति का चिंतन है, याद करती है अपने पति को।
सुबह का मौसम था, पति का चिंतन था, फूलों को लाई रानी चोली चोली।
उद्यान विहार के समय उसे अपशगुन होने लगे। उसने देखा अचानक मेरे माथे की बिंदी क्यों छूट गई, चूड़ियां मेरे हाथों से क्यों टूट गईं, और मेरी मांग का सिंदूर ये क्यों बिखर गया। अंदर दिल के अंदर उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि आज मुझे ये अपशगुन आखिर हुए क्यों। उसी समय एक सखी उसके पास घबराती हुई आई और बोली,
सखी कहे सुनो अरजू हमार, सुन लो मेरी करुण पुकार, भुजा एक आई है
पड़ी हुई भुजा के पास पहुंची और सशंकित होकर आंखों में उसकी अश्रुधारा बहने लगी। अपशगुन उसे पहले ही होते थे, उसने सोचा, ये भुजा पता नहीं मेरे पति की है अथवा किसकी है और विचार करती है।
यदि तू पति का हाथ है प्यारे, यदि तू पति का हाथ है प्यारे, नहीं खड़िया
दुर्गा ने जब अपने पति की कटी हुई भुजा को खून से लथपथ स्थिति में देखा तो कहती है कि यदि ये मेरे पति की भुजा है तो तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, तुम सच्चा बिल्कुल सच युद्ध का सारा हाल लिख दो। कटी भुजा से जब सब कुछ पता चल गया तो पति के बिना वह अपना जीवन निरर्थक मानती है तथा सती होने के लिए कहती है। कौन विलाप होने लगा वहां पर और बार बार सुलोचना कहती है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी।
चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दशकंधर आया तभी मंदोदरी के संग।
जब सुलोचना विलाप कर रही थी तभी रावण मंदोदरी के साथ उसके पास आया और कहता है, बेटी
बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। पत्नी हो जिसने महान गत पाई है।
और रावण बोला,
बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला लेने को मैं समर क्षेत्र में जाता हूँ, और एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ।
धैर्य बनाते हुए कहता है कि मैं युद्ध में लड़ने को जा रहा हूँ और एक शीश के बदले में लाखों शीशों को ले आऊंगा। सुलोचना कहती है,
श्री महाराज यह बेटी तो केवल पति शीश चाहती है। क्या होगा निजपत का शीश मांगती है।
सुलोचना कहती है, महाराज मैं केवल अपने पति का शीश चाहती हूँ, और बिना पति जीवन कैसा है।
बिना पति सुना है संसार, 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 बिना पति सुना है संसार। Hey! पर रहे यीशु वैभव जग में पति सरजी पर उतारो
अपना जीवन इस पृथ्वी पर भार ऐसा समझती है और सास से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी मंदोदरी ने कहा, बेटी
बोली मंदोदरी तब बोली मंदोदरी तब मुझे रुलाती हो
समझाती है और कहती है, बेटी तुम मेरी प्यारी बहू हो, मेघनाथ जो मेरा बड़ा प्यारा बेटा था वो तो स्वर्गलोक को चला गया है और तुम भी छोड़कर मुझे जा रही हो। इस जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, सुख दुख आते ही रहते हैं। संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी झूठ हुआ करते हैं, बार बार समझाती है लेकिन सुलोचना नहीं मानती है और पुनः बोली,
पिया मिलन के कर आज, पिया मिलन के कर आज, मैं रामादल में जाऊंगी मैया रामादल में जाऊंगी। और करके बिना रघु नंदन से, करके बिना रघु नंदन से मैं
है कि मैं अपने पति के शीश को लाने के लिए राम के पास जाती हूँ। तत्क्षण तैयार हो जाती है जाने के लिए।
कुछ ही क्षण में पाल की आ पहुंची उस ठाम, बोले उठा बानरो कटको जय श्री राजा राम।
रामादल में पहुंची, सुलोचना को देखकर श्री राम और उनके सभी साथी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सुलोचना उनके सम्मुख निवेदन करती है, भगवान महाराज केवल मेरे ऊपर एक उपकार कर दीजिए। और इस प्रकार बोली,
कीजिए प्रभु इतना उपकार, कीजिए प्रभु इतना उपकार, मिटे पृथ्वी का भार। करुणा के सागर भगवान दुखिया का दुख मिटा दो, करुणा के सागर भगवान दुखिया का दुख मिटा दो, मेरे पति का आशीष मुझे, हाँ मेरे पति का आशीष मुझे दे, करके धैर्य बना दो। विनय रघुपति है बारंबार, विनय रघुपति है बारंबार, कीजिए प्रभु इतना उपकार।
रामचंद्र जी से आर्त विनय करती है, रोती जाती है, करुण क्रंदन है उसकी जिंदगी में, और कहती, भगवान मुझ दुखिया को मेरे पति का शीश लौटाने की आप कृपा करें। मैंने जैसा आपके संबंध में सुना था भगवान, आप वैसे ही निकले। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सचमुच महान हैं। ये सुनकर राम बोले,
सुलोचना की लख व्यथा मंगवाया वह शीश, देने को जैसे हुए तब यूं बोले सुग्रीव।
जैसे ही सिर देने के लिए महाराज श्री राम तैयार होते हैं, वैसे ही सुग्रीव ने कहा,
प्रमिला के पति की कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, प्रमिला के पति की कटी भुजा वह नहीं जचाए जचती है।
राम की आज्ञा अनुसार मेघनाथ का शीश सुग्रीव लाते हैं, परंतु उसे देने से पहले ही थोड़ा संकोच करते हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे कटी हुई भुजा लिख सकती है, यदि बात वास्तव में सच है तो मुझे तभी विश्वास होगा जब ये कटा शीश यहाँ सबके सामने हंस दे। सुलोचना कहते,
सिर भी हंस जाएगा, संसार मिट जाएगा, पद्मपद की शक्ति से सब कुछ हो जाएगा। हंसते मेरे सर ताज में हूँ जिपत किनारी,
प्रार्थना करती है कि आज हमारी और आपकी इज्जत का सवाल है, दोनों की इज्जत आपके हाथ में है, अतः आप एक बार मुस्करा दो, एक बार हंस दो, मेरी लाज बचाओ। बताते हैं तभी कटा हुआ शेर जोर से हंसने लगा। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यह देखकर महाराज श्री राम जी बोले,
इतने ऊंचे पद पर हो राग
की पदभक्ति को देखकर गदगद हृदय से बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पति के शीश को देते हैं। हुआ क्या,
पति का दे दिया ले लेना सहलाद, रघुराई को तब दिया ऐसा आशीर्वाद,
अपने पति के शीश को लेकर सुलोचना के मुख से क्या निकला,
युग युग तक राम रहोगे अमर, युग युग तक राम रहोगे अमर, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा मन की माला के मन को पर,
सुलोचना अपने पति का शीश पाने के बाद रामचंद्र जी के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करती है और उनके सुनहरे भविष्य की कामना करती है तथा लक्ष्मण को समझाते हुए एक बात और बोली, उन्होंने कहा,
लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमानो, मारा है घननाद को जो है अति बलवान, घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सतो, वास्तव में दो सतियों का सतो संग्राम भूमि में लड़ता था,
का कभी भी अहंकार मत करना कि मैंने मेघनाथ जैसे वीर योद्धा का वध किया है, यह युद्ध तो वास्तव में दो सती उर्मिला और सुलोचना की पदभक्त शक्ति का था। वैसे तुम मेरे पति का संहार कभी भी नहीं कर पाते, परंतु कारण यह था, मेरे पति देव ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जिसने अनिति पूर्वक दूसरे की स्त्री का हरण किया था। आगे क्या हुआ,
लंका में फिर आ गई लेकर पति का शीश, लंका में फिर आ गई लेकर पति का शीश, सादर पहुंचाने गए शीश और सुग्रीव,
लंका में अपने पति के शीश को लेकर आई, श्री राम ने आदर सहित भेजा, सुग्रीव भी साथ में थे। इधर अपने पति को देखकर सुलोचना पुनः विलाप करती है, बिलखती है, आज उसके जीवन में गहरा विषाद है, गहरा दुख है, वह अपने जीवन को भार रूप समझती है और विलाप करती है,
रो रोए कर रही करुड़ बिलाप, प्रीतम साथ हमारा छोड़ा, रो रोए कर रही करुड़ बिलाप, प्रीतम साथ हमारा।
सुलोचना, सुलोचना अपने पति के चेहरे को देखकर बार बार विलाप करती है कि हे पतिदेव, मैंने तुम्हारी सेवा ही सब कुछ अपना धर्म कर्म और पूजा समझी थी। तुम्हारे चरणों की सेवा के अलावा ये हाथ भगवान की पूजा करने में भी नहीं झुके। और वह पुनः चेहरे को देखकर बस एक ही सिद्धांत अपनाती है कि अब मुझे अपने पति के साथ ही चिता में जल जाना है, सती हो जाना है।
बस अब केवल यह कहना है चंदन की चिता तैयार हुई।
सुलोचना को हनुमान व सुग्रीव आदर पूर्वक लंका में भेजकर वापस लौट जाते हैं। तभी लंका के सागर तट पर चंदन की चिता तैयार हुई। उस चंदन की चिता में दोनों ही स्थूल शरीर अग्नि में जलकर आकाश में छा जाते हैं तथा देवताओं की तरफ से ये आवाज आई,
आओ पति के प्रिय धाम।